रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम पवित्र कुरान के सूरह आराफ की 180 से 183 तक की आयतों से कर रहे हैं। कारी हैं श्री अली असगर बुरुमत।
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس پرکار آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، نسندیہ میری چال درڑ ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، سبھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج شکروار ہے، نومبر کی 12، ربیع ثانی کی 6 اور آبان ماہ کی 21 تاریخ۔ سوتو، ہمارے یہ کاریکرم شارٹ ویو پر 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ آج کے پرسارت کیے جانے والے کاریکرموں کی روپ ریکھا اس پرکار ہے۔ پہلے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے، وشو سماچاروں کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم آپ سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم کے اوپرانت آپ کا من پسند کاریکرم پیش کیا جائے گا پتر سنسار، और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। दोस्तों, रेडियो तेहरान के कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि वार्ता में प्रगति के लिए सारे पक्षों का समझौते में वापस आना जरूरी है। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में विस्फोट हुआ है। हसन नसरुल्ला ने कहा है कि सीरिया की कामयाबी को अरब शासकों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय फिल्म अभिनेता कंगना रनौत का कहना है कि देश को आजादी 2014 में मिली है, 1947 में नहीं। अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि वार्ता में प्रगति के लिए सारे ही पक्षों का परमाणु समझौते में वापस लौटना जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने उप विदेश मंत्री अली बाकरी के यूरोप की दौरे की ओर संकेत किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि वियना वार्ता में प्रगति के लिए समस्त पक्षों को परमाणु समझौते में वापस लौटने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि अली बाकरी परमाणु समझौते के बारे में तीनों यूरोपीय देशों से विचार विमर्श और यूरोप के साथ ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में वार्ता के लिए यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। अब तक फ्रांसीसी और जर्मनी अधिकारियों से वे मुलाकातें भी कर चुके हैं। याद रहे कि ईरान ने ऐलान किया है कि वह वियना वार्ता में प्रगति के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है और गतिरोध के इरादे से वार्ता प्रक्रिया को दोबारा शुरू नहीं करना चाहता। उप विदेश मंत्री ने पश्चिमी पक्षों के साथ ईरान की रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं के विषय पर वार्ता की संभावना को रद्द कर दिया है। परमाणु समझौते की बहाली और परिणाम में प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए जारी वार्ता के लिए सक्रिय ईरान के उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार अली बाकरी ने ब्रिटिश समाचार पत्र से बात करते हुए कहा है कि परमाणु समझौते का अपना विशेष ढांचा है और गैर परमाणु मामलों का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं पर किसी से कोई वार्ता नहीं करेगा। उन्होंने वियना वार्ता का उल्लेख करते हुए बताया है कि ईरान इस बात का इच्छुक है कि अमेरिका ये गारंटी दे कि वह फिर से परमाणु समझौते से बाहर नहीं निकलेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री ने इसी तरह ब्रिटेन के पास ईरान की 400 मिलियन पाउंड की राशि का भी उल्लेख किया और कहा कि मुख्य ऋण उसकी अदायगी और उसकी राशि के संबंध में दोनों देशों के बीच सहमति पाई जाती है, किंतु एक चीज़ जो उसकी अदायगी में रुकावट बनी हुई है वो अदायगी की शैली है, जिसके बारे में लंदन और तेहरान के बीच वार्ता जारी है। तेहरान में जुमे की नमाज के दौरान हुज्जतुल इस्लाम कासिम सिद्दीकी ने अफगानिस्तान और इराक की समस्याओं को इस्लामी जगत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। हुज्जतुल इस्लाम कासिम सिद्दीकी ने नमाज के खुतबों में इराक और अफगानिस्तान की समस्याओं की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने इस्लामी जगत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी कमर कस ली है। पहले उन्होंने इराक के परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए इस देश की सरकार और न्यायपालिका से मांग की है कि वो वहां होने वाली घटनाओं की बहुत ही गंभीरता से जांच करे। उन्होंने कहा कि चुनाव का मामला अगर हल नहीं होता है तो इराकियों के विश्वास को ठेस पहुंचेगा। हुज्जतुल इस्लाम काजिम सिद्दीकी ने अफगानिस्तान का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां से अमरीका भाग तो गया है लेकिन षड्यंत्र भी नहीं भागे हैं। अफगानिस्तान में उसके लिए दाइश मौजूद है और मतभेद फैलाने की नीति पर वो लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान एक स्वतंत्र और स्वावलंबित अफगानिस्तान का इच्छुक है। अफगानिस्तान में एक मस्जिद में फिर विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोग हताहत और घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 15 लोगों के घायल होने की सूचना है। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के स्पिनगर क्षेत्र की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। एक स्थानीय डॉक्टर का कहना है कि विस्फोट में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। तालिबान के एक स्थानीय अधिकारी ने भी इस विस्फोट की पुष्टि करते हुए बताया है कि धमाके में लोग हताहत और घायल हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि बम को पहले मस्जिद में लगा दिया गया था। अमरीकी मीडिया सूत्रों ने इराक में अमरीकी आतंकवादी सैनिकों की सबसे बड़ी छावनी ऐनुल असद पर ईरान के मिजाइल हमले के संबंध में और अधिक सच्चाई से पर्दा उठाया है। अमरीकी न्यूज चैनल CBS की वेबसाइट के अनुसार ऐनुल असद छावनी पर ईरान की IRGC के मिजाइल हमलों के बाद अमरीकी सेना इस पर हमले को छोटा करके पेश करने के लिए दबाव डाला गया था। CBS चैनल की वेबसाइट का कहना है कि ईरान ने जवाबी और इंतकामी कार्रवाई करते हुए जो हमला इराक में अमरीकी सैनिकों की छावनी पर किया वो इतिहास में अमरीकी सैनिकों पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था। उक्त वेबसाइट ने लिखा है कि ईरान ने ऐनुल असद पर 1600 पाउंड वजनी वॉरहेड के अपने 11 मिजाइलों से हमला करके उसे मिट्टी में मिला दिया था। हिजबुल्ला का कहना है कि अरब शासकों ने सीरिया की कामयाबी को अब स्वीकार कर लिया है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने गुरुवार की रात शहादत दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन सारे शहीदों और उनके परिजनों से संबंधित है। हिजबुल्ला ने इस दिन को शहीदों का नाम देकर लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन में अहम काम अंजाम दिया और ये एक बड़ा दिन है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इस्लामी प्रतिरोध आज शक्ति के चरम पर है और उसने इसराइल को भी भयभीत कर रखा है। हिजबुल्ला के प्रमुख ने सीरिया में अरब शासकों की ऐतिहासिक पराजय की ओर संकेत करते हुए कहा है कि संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री का सीरिया का दौरा वास्तव में सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद की सफलता और सीरिया विरोधी अरब शासकों की नाकामी तथा पराजय का प्रतीक है। सीरिया के सैनिकों ने अलहस्का प्रांत में अमरीकी आतंकवादी सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी प्रांत अलहसका में कामिशली इलाके में अलवफा स्क्वायर की चेक पोस्ट पर सीरियाई सैनिकों ने अमरीकी आतंकवादी सैनिकों के काफिले को रोक लिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद अमरीकी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी सीरियाई सेना ने अल काजिया कॉरिडोर पर अमरीकी आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। याद रहे कि आतंकवादी अमरीकी सैनिक और उनके समर्थित अन्य आतंकवादी समूह सीरिया के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए हैं और इस देश के तेल तथा अन्य संसाधनों को वहां से लूट रहे हैं। दक्षिणी मारिब में सऊदी गठबंधन का आखिरी किला भी अब ढह गया है। यमन की एक वेबसाइट ने खबर दी है कि दक्षिणी मारिब के वादी ओबैदा नामक कस्बे पर अलफलज नामक रणनीतिक क्षेत्र आज़ाद करा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र मंसूर हादी के लड़ाकों का आखिरी गढ़ था। मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी की वेबसाइट ने रिपोर्ट दी है कि कल 11 सैन्य अधिकारियों और दर्जनों सैनिकों की शव यात्राएं निकाली गईं। बताया गया है कि ये सैनिक और सैन्य अधिकारी अलफजल नामक क्षेत्र में हुई झड़पों के दौरान मारे गए। तालिबान ने पाकिस्तान को अमरीकी हथियार बेचे जाने पर आधारित खबरों का खंडन किया है। तालिबान की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान को हथियार बेचने पर आधारित पाकिस्तानी मीडिया में आने वाली खबरों का कड़ाई से खंडन किया है। तालिबान प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस बारे में एक बयान जारी किया है। तालिबान की ओर से जारी किए गए बयान में आया है कि उनकी सरकार हथियारों की तस्करी के मुद्दे पर बहुत गंभीर है। भारतीय फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि देश को आजादी सन 2014 में मिली है, सन 1947 में नहीं। कंगना रनौत का कहना है कि 1947 में तो भारत को भीख मिली थी, वास्तव में आजादी तो सन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने से मिली है। पीटीआई के अनुसार कंगना रनौत के इस बयान की लोग खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इस पर व्यापक स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने मुंबई पुलिस में आवेदन दाखिल करके कंगना के खिलाफ राजद्रोह और भड़काऊ बयान के लिए मामला दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा भी बहुत से नेताओं ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है और इसे यही कहा जाना चाहिए। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे ईरान के विदेश उपमंत्री की यूरोपीय देशों की यात्रा की।
हम दो जानबे हम موضوعات مرتبط با مسائل منطقه‌ای و همینطور
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम इमारात के विदेश मंत्री की दमिश्क यात्रा के बारे में जारी अटकलों के बारे में भी आपको बताएंगे।
مقعد سوريا في القمة العربية।
भारत नियंत्रित कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है। वहीं घाटी में हिंसा की घटनाएं जारी हैं, इस पर भी एक रिपोर्ट सुनवाएंगे।
सीआरपीएफ की नई नई बटालियन रोज बरोज आ रही हैं।
तो राजनीतिक चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं विदेश उपमंत्री की यूरोप यात्रा से। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश उपमंत्री अली बाकरी कनी यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। परमाणु वार्ता से पहले होने वाली ये यात्रा महत्वपूर्ण है। लंदन से आईआरआईबी के लिए मुजतबा कासिमजादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
ईरान के उप विदेश मंत्री जो फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकातें करने के बाद फौरन लंदन पहुंचे। यहां भी उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे कई मुलाकातें की और बड़ा ही व्यस्त दिन गुजारा।
در مورد موضوعات هم دو جانبه هم موضوعات مرتبط با مسائل منطقه‌ای و همینطور مسئله مربوط به مذاکرات پیش رو گفتگو داشتیم تقریبا।
विदेश उप मंत्री ने बताया कि द्विपक्षीय विषयों और क्षेत्रीय मुद्दों इसी तरह प्रस्तावित परमाणु वार्ता के बारे में बातचीत हुई। ब्रिटेन के अधिकारियों से कुल मिलाकर लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई, कई मीटिंगें हुई। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय में अलग अलग अधिकारियों से कई मुलाकातें हुई। कई साल से दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच इस स्तर की बातचीत नहीं हो रही थी, इसलिए आज की जो मुलाकातें हैं वो पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही हैं। یہ بات چیت بہت ہی ضروری تھی۔ وینا میں اگلے دور کی وارتا ہونے سے پہلے اس ملاقات کا ہونا بہت ہی ضروری تھا۔ آرتھک اور وتیہ سنستھاؤں کے ادھیکاریوں سے ملاقاتیں ایران کے ودیش منتری کا ایک انیہ مہتوپورن کارکرم تھا۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے اپ ودیش منتری نے اسی طرح لندن میں کئی انیہ سنستھاؤں کے ادھیکاریوں سے بھی ملاقاتیں کی۔
جلسے مفیدی بود۔
اپ ودیش منتری علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ یہ ملاقاتیں بھی بڑی سارتھک تھیں۔ ودیش منترالیہ کے استر پر ہم ان سنستھاؤں کی کہاں اور کس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ لندن میں ان سنستھاؤں کا کام آگے بڑھے، اس کا جائزہ لیا گیا۔ ودیش اپ منتری نے کئی تھنک ٹینکوں میں ایران کے معاملوں کے وشیشجوں، میڈیا سنستھانوں اور امریکی ٹی وی چینل سی این این سے اپنی بات چیت میں ایران کا اسٹینڈ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اپنے وعدوں پر کٹیبدھ نہیں ہے۔ اسپین کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ودیش اپ منتری نے تینوں یورپی دیشوں میں اپنی ملاقاتوں اور بات چیت کا نچوڑ اس طرح پیش کیا۔
در مجموع من ارزیابی از گفتگوهایی که در این سه پایتخت اروپایی داشتم این است که در عین حالی که اختلاف نظر در برخی از موارد،
انہوں نے کہا کہ کل ملا کر ان تین یورپی دیشوں میں ہوئی بات چیت کے بارے میں میرا مولانکن یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ کچھ وشیوں میں ہمارے بیچ مت بھید ہیں، لیکن سمان درشٹیکوڑ والے بندوؤں کے آدھار پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آنے والی وارتا میں ایک اچھا اور سارتھک واتاورن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ودیش اپ منتری علی باقری کنی نے وینا میں 29 جون کو آیوجت ہونے والی وارتا سے پہلے یورپی دیشوں کے ادھیکاریوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور صاف کر دیا ہے کہ وارتا میں ہماری سب سے مہتوپورن پرارتھمکتا پرتیبندھوں کو سماپت کروانا ہے۔ لندن سے IRIB کے لیے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ۔
संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री ने सीरिया का दौरा किया। इस दौरे के बारे में टीकाकारों के स्तर पर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। दमिश्क से इसाम हिलाली की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री की दमिश्क यात्रा के बारे में टीकाकार अलग अलग विचार पेश कर रहे हैं, मगर सीरिया में ये विचार आम है कि पश्चिमी और अरब देशों ने सीरिया के खिलाफ 10 वर्षों तक भयानक साजिशें रची, लेकिन आज प्रतिरोधक मोर्चे का पलड़ा सब पर भारी है। सीरियाई टीकाकार का कहना है कि सीरिया के शासन को गिराने और इस देश को बंद गली में पहुंचाने की कोशिशें नाकाम रही हैं, इसलिए अब वो दमिश्क से संपर्क के चैनल खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शायद इस तरह से सीरिया को प्रतिरोध मोर्चे से अलग कर सकें। इस बीच सीरिया की सरकार ने दमिश्क के साथ संबंधों की बहाली के इच्छुक अरब देशों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, मगर उसका ये भी कहना है कि इस बारे में कोई भी पूर्व शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी। सीरिया के मंत्री ने कहा है कि हम सीरिया में निवेश की अरब देशों की योजनाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सैद्धांतिक स्टैंड बदल देंगे। हम अपने स्ट्रेटेजिक घटकों विशेष रूप से ईरान के साथ सहयोग को आगे भी जारी रखेंगे।
مقعد سوریا فی القمة العربية۔
بہرحال ان دنوں سیریا کے ساتھ عرب دیشوں کے رشتوں میں ایک نیا ادھیائے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عرب لیگ میں سیریا کی سدستا بحال کر دی جائے گی۔ سیریا اسے ایک بڑی سفلتا کے روپ میں مانتا ہے۔ سیریا پر اوید زائونی شاسن کی اور سے جاری حملے بھی ورتمان پریورتنوں سے اسمبندھت نہیں ہیں، وشیش کر اس لیے بھی کہ ابوظہبی نے تل اویف کے ساتھ حال ہی میں شانتی سمجھوتا کیا ہے۔ اس بات کو لے کر سیریا میں گمبھیر چنتائیں پائی جاتی ہیں۔ دمشق سے IRIB کے لیے اسام ہلالی کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में हिंसा की घटनाओं का क्रम जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है और गृह मंत्री के बयान को हास्यास्पद बताया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारतीय सुरक्षा बलों के एक प्रवक्ता ने कहा है कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ एक जबरदस्त मुठभेड़ में घाटी में सक्रिय सबसे बड़े छापामार संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वरिष्ठ कमांडर सजाद मौलवी अपने एक साथी के साथ हताहत हुआ, जो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा कि विशेष सूचना मिलने के तुरंत बाद उन्होंने इस क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान के दौरान एक मुठभेड़ आरंभ हुई जो काफी समय तक जारी रही। इस मुठभेड़ में दो अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनमें सजाद मौलवी भी शामिल है जो वर्ष 2016 से सक्रिय था और इस पर बड़ी इनाम भी सुरक्षा बलों ने रखी थी। सुरक्षा बलों ने कहा कि ये कमांडर बहुत सारी हत्याओं में आरोपी है। उन्होंने कहा कि इसके हताहत सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस बीच एक बार फिर प्रशासन ने श्रीनगर के ऐतिहासिक जामे मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद किया और यहाँ पर किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर लोगों ने काफ़ी नाराजगी का इजहार किया है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कहा है कि नई दिल्ली ताकत के बल पर कश्मीरियों को खामोश कराना चाहती है और इसी को शांति का नाम दिया जाता है। उन्होंने एक समारोह के बाद पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हजारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया, उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई नई बटालियन रोज बरोज आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये सीआरपीएफ की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये हर में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वजन नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ख़राब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।
इस बीच कोविड स्थिति में अगर काफी सुधार आया था, परंतु पिछले कई दिनों से इसमें एक बार फिर उछाल आया है और प्रशासन ने कहा है कि वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो कर्फ्यू घोषित करने वाले हैं। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ रेडियो तेहरान से राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र संसार, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, आशा है कि आप सकुशल होंगे और कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे।
और आज भी हम श्रोताओं के कुछ पत्र और ईमेल और कमेंट्स कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हैं ईमेल, और ये है जशीम जैद, लिखते हैं, मुझे रेडियो तेहरान बहुत पसंद है, मुझे बंगाली और हिंदी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए सुनता हूँ। मैं रेडियो तेहरान फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देने का अनुरोध कर रहा हूँ। مجھے لگتا ہے ان کا مطلب ہے واٹس ایپ پہ وہ لائیو دینا چاہ رہے ہیں.
نہیں نہیں وہ یہ صحیح پوائنٹ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے.
جی
فیس بک پر لائیو پرسارن کی بات کر رہے ہیں.
جی
فیس بک پر لائیو پرسارن فی الحال ہمارا نہیں ہے.
جی
اس لیے کہ اس کے لیے جو تیاریاں ہونی چاہیے ابھی نہیں ہیں, لیکن ویب سائٹ پر لائیو پرسارن رہتا ہے. اگر اس ٹائم پر سنیں جو ہماری لائیو پرسارن کا ٹائم ہے بھارت کے یعنی تہران کے سمے کے انوسار شام 6 بجے اور بھارت کے سمے کے انوسار شام 8 بجے جو سمے ہے, اس سمے پر ہمارے کارکرم لائیو ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. فیس بک لائیو کے لیے ابھی جو میں نے جیسا کہ بتایا اس کے لیے جو تیاریاں ہونی چاہیے, جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے.
جی اگلا ای میل ہے مرشد آباد سے, مرشد آباد پشچم بنگال سے شیویندو پال کا. لکھتے ہیں متالی لسنرز کلب کے, لسنرز کلب کا میں سدسیہ ہوں اور بھیا انہوں نے بنگالی ہندی مکس کر کے بہت سندر میل بھیجا ہے.
جی.
لکھتے ہیں ریڈیو تہران کے کبھی سبھی کاریہ کرتا اور شروتا بندھو کو متالی لسنرز کلب کی طرف سے پیار بھرا نمسکار. میں ہندی سیوا ریڈیو تہران کا ایک نیمی شروتا ہوں اور بھیا آپ کو تو عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ بنگالی جو ہوتے ہیں تھوڑا بہت ایسے ہی ان کا اچارن ہوتا ہے. اور ریڈیو تہران ہندی سیوا کے کاریکرموں کو 9510 کلو ہرٹس پر سن رہا ہوں. میرے علاقے میں بہت سارے شروتا آپ کے کاریکرم سنتے ہیں. سماچار اور سبھی کاریکرم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایران اور وشو کے بارے میں بہت ساری جانکاری ملتی ہیں. اس کے لیے آپ کا دھنیواد.
بہت بہت دھنیواد. دیکھیے بہت ہی مدھر بھاشا کا استعمال کیا ہے ہمارے ان شروتا نے. ہم ان کا آبھار ویکت کرتے ہیں, ان کا سواگت ہے خاص طور پر کاریکرم پتر سنسار میں. یہ بھاشا دیدی اگر آپ دھیان دیں تو واقعی بڑی میٹھی زبان ہے جو اس طرح سے, اور بھارت کی شاید خوبصورتی بھی یہی ہے کہ وہاں بہت وویدھتا ہے اور وویدھتا میں ایکتا بھی اور ساتھ ساتھ بڑی سندرتا بھی, یہ بڑا آکرشن ہے. بہت بہت دھنیواد. اور شوتا اب باری ہے سنسکرتی سے جڑی ایک خبر کی, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دیدے نے آج کے لیے کیا خبر چنی ہے.
بھیا آج ہم یزد شہر کی سیر کر رہے ہیں.
جی
مدھیہ ایران میں ایتیہاسک شہر یزد دنیا کا سب سے بڑا کچی اینٹوں کا شہر ہے. کچھ سال پہلے تک یزد میں پراچین سمارکوں کو پنرستھاپت کرنے کے لیے راک اینٹوں کا اپیوگ کیا جاتا تھا, لیکن اب ہم اس یگ میں لوٹ آئے ہیں جب دھوپ میں سکھائی گئی مٹی کی اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے. پانی اور اپجاؤ بھومی جیسے پراکرتک نعمتوں سے ونچت یزد نواسیوں کو کچھ نیا سوچنا پڑا اور پانی پانے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑی. اس لیے انہوں نے بھومیگت جل سیتو کا آوشکار کیا جنہیں غنات نام سے جانا جانے لگا. اس آوشکار نے یزد کے ریگستانی شہر میں پانی آپورتی ہونے لگی اور وہاں کے نواسیوں کے پاس اب زمین کے ساتھ ساتھ پانی بھی تھا. حالانکہ اب یزد کا ایتیہاسک شہر وشو دھروہر سل کے روپ میں انکت کیا گیا ہے, یزد میں لوگوں نے سبھی عمارتوں, پراچیروں اور گڑھوں, اپاسنا ستھلوں, سینیہ ستھلوں اور جل سنرچناؤں جیسے کہ کنڈوں کے نرمان کے لیے اسی پانی اور زمین کا اپیوگ کیا ہے. یزد میں نرمت پہلی سنرچنا پورو اسلام یگ کی ہے جب ادھکانش عمارتیں کچی اینٹوں سے بنی تھی. شروعات میں دھوپ میں سکھائی گئی مٹی کی اینٹوں کے آیام اتنے بڑے تھے کہ انہیں لگا کہ اگر بڑی اینٹوں کا استعمال کیا جائے تو وہ کم سمے میں عمارتیں کھڑی کر پائیں گے.
جی
مٹی کی اینٹیں عام طور پر باہر بنائی جاتی ہے تاکہ وہ دھوپ میں سوکھ سکیں. کچی اینٹوں کی سب سے بڑی ماترا کا اپیوگ کوالا میبود اور ابرآباد کیسل اور یزد گڑھ جیسی سنرچناؤں کے نرمان میں کیا گیا تھا, اور اب ایتیہاسک سمارکوں کو پنرستھاپت کرنے کے لیے کچی اینٹوں کا اپیوگ اتیت کی طرح سے کیا گیا ہے.
دلچسپ خبر.
جی
तो अब इस खबर के बाद श्रोताओं बारी है आपके कमेंट्स की, जो आप हमारे खबरों पर या अन्य सामग्री जो वेबसाइट पे होती है उस पे जो लिखते हैं। तो दीदी क्या कमेंट्स आपने चुने
जी? अमेरिका ने फिर लगाए प्रतिबंध, ईरान ने कहा वॉशिंगटन में सरकार बदली रवैया नहीं। इस पर नीमा पारसियान लिखते हैं, बाइडन, ट्रंप, ओबामा, बुश, क्लिंटन, बुश, रीगन, कार्टर, निक्सन आदि और भविष्य के अमरीकी राष्ट्रपति उसके पिछले राष्ट्रपति के समान ही होंगे। अमरीकी राष्ट्रपति कोई और नहीं है, केवल बड़े बड़े व्यवसायी तानाशाही ही हैं।
ये बात बहुत तथ्यपूर्ण है, बहुत सच्चाई है इसमें कि अमरीकी नीतियां बदलती नहीं हैं। अमरीका में सरकारें बदल जाती हैं बेशक, लेकिन दुनिया को देखने का जो उनका दृष्टिकोण है, दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं अमेरिकी शासक, अमेरिकी राजनेता, वो एक है। वो दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, एक वो हैं जो कि वर्चस्ववादी देश हैं और दूसरा भाग वो है जो इस वर्चस्ववाद का, इस विस्तारवाद का निशाना बनते हैं वो देश। तो इस तरह से दुनिया को बांट लेते हैं। इसके तहत फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि दुनिया के देशों के पास जो संसाधन है उसे अमेरिकी अपना माल समझते हैं, उसके उसके बारे में फैसला करना अपना अधिकार समझते हैं। जैसे कि पश्चिमी एशिया में अगर तेल के भंडार मौजूद हैं तो उनको ये लगता है कि इस भंडार की नीतियों का निर्धारण उनके हिसाब से होना चाहिए, इनकी बिक्री उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये बात है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, नीतियां हैं और सोच है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स।
सच्चाई की कड़वाहट से तिलमिलाए सऊदी अरब, बहरीन और अरब देश लेबनान से राजदूतों को वापस बुलाने की तैयारी। इस पर अफजल जैदी लिखते हैं, चिंता ना करें, वे अपने दूतावास खोलने के लिए अपने घुटनों पर भीख मांगते हुए आएंगे, जैसा कि इन अन्य अरब राज्यों ने सीरिया के साथ किया था। इराक को ही देखो, ये फिर से खून बह रहा है।
ये खबर भी हालिया दिनों चर्चा में रही दीदी, और इस पर बहुत टीका टिप्पणी भी बहुत हुई, इस पर कमेंट्स भी बहुत रहे हर सतह पर कि लेबनान और सऊदी अरब के बीच में एक विवाद पैदा हुआ। और विवाद ये था कि बहुत ही सामान्य सी बात थी कि लेबनान के सूचना व प्रसारण मंत्री ने, जो कि दरअसल एक जाने माने पत्रकार भी हैं, करदाही, जोसेफ करदाही या जॉर्ज करदाही, और उन्होंने एक बात ये कही कि यमन में जो कुछ हो रहा है, तो यमन में सऊदी अरब जो हमला कर रहा है, यमनी उसका अपने बचाव में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन्होंने किसी पर अटैक नहीं किया है। तो ये बात कही थी जो कि ज़मीनी सच्चाई सारी दुनिया जानती। इसी के बाद से ये विवाद बढ़ गया। अलबत्ता अब टीका इस पे समीक्षाएं आ रही हैं कि इस ये तो विवाद का ज़ाहरी रूप है, असल बात कुछ और है। और सऊदी अरब कई और मोर्चों पर नाकामी का मुँह देखने के बाद अब इस तरह के कदम उठा रहा है कि उसने दूतावास बंद करने की बात की है, राजदूत को वापस बुलाने और लेबनानी राजदूत को वापस भेजने की बात की है। तो ये एक नया विवाद है, देखना है कि कहां तक जाता है। और दीदी अब बारी है किसी श्रोता के विचार सुनने की, तो देखते हैं कि आपने किसका चयन किया है इस सप्ताह के।
जी, कोलकाता से कलोल नाथ है और इन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कही है, तो चलते हैं इनकी बात सुनते हैं।
अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम कोलकाता। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स अबाउट रेडियो तेहरान ईरान, व्हिच आई हैव बीन लिसनिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, नॉट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, बट यस आइडियली ऑन वीकेंड्स। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, व्हाट made me interested about this particular station is the rich cultural heritage of Iran. Iran has a very old history of friendship with our country, India. I belong to India and to a certain extent aware of the history of Iran, the cultural heritage, the rich diversity of the country, the richness of the historical architecture that Iran has with it. And it is a very nice experience when one listens to Radio Tehran, particularly in the Bangla and Hindi and also in the English broadcast. One learns to have the feel of the country and the old flavor that India shares with Iran. And it has been many times proven that what we think in India about our politics, about our cultural heritage, it is astounding to find that Iran shares the same opinion and thoughts in its broadcasts. I wish all the success for this particular station of Radio Tehran, Iran. I wish the country prospers in legacy, in history, in its rich cultural heritage, in economy, and every possible field of science and technology. I have my sincere wishes for Radio Tehran as a station, as a broadcasting medium on shortwave, and let Radio Tehran keep on inspiring us, keep on entertaining us, keep on informing us for all the years to come. Thank you very much. This is Kollul Nath from India, an avid listener of Radio Tehran, Iran. Thank you so much.
जी दीदी, तो धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि मुझे नहीं लगता कितना समय बचा होगा कि आप कोई कमेंट या कोई और चीज शामिल करें। बस हम अपने श्रोता का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे और श्रोता भी हम ये चाहेंगे कि अपने विचार ज़रूर हम तक भेजें और अपना वॉइस नोट भेजें, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह से कि कार्यक्रम पत्र संसार में दीदी उसको शामिल कर सकती हैं। तो दीदी, मेरे ख्याल से आखिर में श्रोताओं से आप अनुमति ले लीजिए, चाहे पता वगैरह बता दीजिए।
जी, हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir, और हमारे वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। और भैया, व्हाट्सएप संपर्क भी हम बता दें, संपर्क नंबर है 0098903506542।
तो श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम पत्र संसार अपने समापन को पहुंचता है। अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की करनी कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में होने वाली प्रगतियों और इंसान में अवसाद या डिप्रेशन के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, 14 जनवरी 2018 की एक रिपोर्ट के आधार पर नेचर इंडेक्स संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालिया एक दशक के दौरान ईरान ने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में 22% वार्षिक विकास किया है और विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की। रिपोर्ट में बताया गया है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग तकनीक के क्षेत्र में ईरान दुनिया में अपनी पहली पोजिशन बनाने में कामयाब रहा है। इस्लामी जगत के वैज्ञानिक दस्तावेजों की साइट के अनुसार ईरान में विज्ञान के उत्पादन की प्रक्रिया, जो वेब ऑफ साइंस डब्ल्यू او ایس کے دستاویز سے حاصل ہوئی ہے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے 1978 میں 500 دستاویز پنجیکرت کیے تھے جو 2017 میں بڑھ کر 47,000 سے زیادہ ہو گئے۔
اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران 1978 میں دنیا میں وگیان کے اتپادن میں 0.095% شامل رہا اور اس طرح سے وہ 43 نمبر پر تھا، جبکہ 2017 میں ایران کی بھاگیداری بڑھ کر 1.9% ہو گئی ہے۔ ایران دنیا میں 16 استھان پر تھا۔ اس آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد کے کال میں ایران نے وگیان اور تکنیک کے شیتر میں 90% سے ادھک کی بھاگیداری کی، اور کرانتی سے پہلے کی تلنا میں اس کی وگیان کے شیتر میں زبردست بھاگیداری رہی ہے۔
موجود دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے حالیہ دشک کے دوران وگیان اور تکنیک کے شیتر میں جو شوھ پتر اور ریسرچ پیپر لکھے ہیں وہ 6 گنا ہیں، لیکن اسلامی گڑتنتر ایران نے 22% وکاس کر کے دنیا کے دیشوں میں زبردست ویگیانک پرگتی کی۔ اس رپورٹ کے آدھار پر ایران کے بعد چین اور بھارت 14% کے ساتھ دوسرے ستھان پر تھے، جبکہ برازیل، دکشنی کوریا، آسٹریلیا، اسپین، اٹلی، روس، کینیڈا کرمشاہ بات کے ستھان پر رہے ہیں۔ دوستوں، آئیے اب ہم آپ کو ڈپریشن یا اوساد کے بارے میں وستار سے بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ابھی تک یہ اسپشٹ روپ سے نہیں بتایا جا سکا کہ افساد کس وجہ سے ہوتا ہے، مگر مانا جاتا ہے کہ اس میں کئی چیزوں کی اہم بھومیکا ہوتی ہے۔ زندگی کے کہیں اہم پڑاؤ جیسے کسی نزدیکی کی موت، نوکری چلے جانا یا شادی کا ٹوٹ جانا عام طور پر افساد کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے من میں ہر سمے کچھ برا ہونے کی آشنکا رہتی ہے تو اس سے بھی افساد میں جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے تحت لوگ سوچتے رہتے ہیں، میں تو ہر چیز میں وفل رہا ہوں۔
کچھ میڈیکل کارنوں سے بھی لوگوں کو اوساد ہوتا ہے، جن میں ایک ہے تھائرائڈ کی کم سکریتا ہونا۔ کچھ دواؤں کے سائڈ ایفیکٹس میں بھی اوساد ہو سکتا ہے۔ ان میں بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کچھ دوائیں شامل ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اوساد بنا کسی ایک خاص کارن کے بھی ہو سکتا ہے، یہ دھیرے دھیرے گھر کر لیتا ہے اور بجائے مدد کی کوشش کے آپ اسی سے سنگھرش کرتے رہتے ہیں۔
دماغ کے رسائن افساد کی حالت میں کس طرح کی بھومیکا ادا کرتے ہیں ابھی تک یہ بھی پوری طرح نہیں سمجھا جا سکا ہے، مگر زیادہ تر وشیشگی اس بات سے سہمت ہے کہ یہ صرف دماغ میں کسی طرح کے اسنتولن کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن یا افساد کسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک چھوٹا جواب ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔
ویسے شوھ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انوانشک وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے تحت کچھ لوگ جب چنوتی پورن سمے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوساد میں جانے کی آشنکا ادھک رہتی ہے۔ جن لوگوں کے پریوار میں اوساد کا اتہاس رہا ہو وہاں لوگوں کے ڈپریسڈ ہونے کی آشنکا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گنسوتر 3 میں ہونے والے انوانشکی بدلاؤ سے بھی اوساد ہو سکتا ہے۔ اس سے لگ بھگ 4% لوگ پربھاوت ہوتے ہیں۔
یہ ایک غلط فہمی ہے کہ افساد یا ڈپریشن وردھاوستھا کی ایک بیماری ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ افساد کسی بھی عمر میں ایک سامانیہ بات نہیں ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ عمر کے ان دوروں میں ویکتی اپنی چنتاؤں کو چھپاتا ہے اور اکیلے ہی سنگھرش کرتا ہے۔ حالانکہ اس روگ کے کارگر اپچار موجود ہیں، لیکن وردھ لوگ زیادہ تر اکیلے ہی کشٹ بھگتنے کی پرورتی رکھتے ہیں۔ ادھیوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ سمودائے میں افساد کو ایک روگ نہیں بلکہ ویکتتو کی کمزوری یا پھر وردھاوستھا میں ایک اپریہارے انگ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔
मस्तिष्क का बिंबन करने वाले अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि अवसाद की स्थिति में मना स्थिति, सोच विचार, नींद, भूख और व्यवहार को निर्देशित करने वाले मस्तिष्क परिपथ ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में अवसाद के विशिष्ट कारण और रूप होते हैं। उदाहरण के लिए सेवानिवृत्त के बाद के वर्गों में अवसाद की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक नई भूमिका अपनाने और एक नई दिनचर्या के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद के दशक में इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिर ये उम्र के सातवें दशक के मध्य में व्यक्ति को जकड़ सकता है। इसके पीछे दीर्घकालिक बीमारी, साथ के लोगों और मित्रों की मृत्यु का सिलसिला और चलने फिरने की बढ़ती असमर्थता जैसे कारण हो सकते हैं।
युवा लोगों की तुलना में वृद्धों को अवसाद के लक्षणों के रूप भिन्न होते हैं। चिंता या बेचैनी आम बात है, साथ ही सोचने और करने की क्षमता मंद पड़ जाती है। हालांकि किसी भी उम्र के अवसाद में ऐसा होता है, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों में यह अधिक होता है।
वृद्ध लोगों में अवसाद के लक्षण शारीरिक स्तर पर ज्यादा प्रकट होते हैं। हालांकि ये बता पाना मुश्किल होता है कि लक्षण अवसाद के हैं या उम्र की आम बीमारियों के बढ़ने से पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए उन्हें ज्यादा कमजोरी आ सकती है, सरदर्द, धड़कन का तेज होना, पेट या कमर दर्द, सांस फूलना और कब्ज कुछ अन्य लक्षण हैं।
इसी तरह अवसाद के कारण मानसिक क्रियाकलाप की क्षमताएं किसी भी उम्र में कमजोर पड़ सकती है, लेकिन युवा लोगों में मानसिक जीवट ज्यादा होता है, अतः वे लक्षण वृद्ध लोगों में ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। अवसाद के प्रभावों और अल्जाइमर जैसे रोग में अंतर करना बहुत जरूरी है।
लगातार अवसाद की स्थिति, जिसे प्रेसिडेंट डिप्रेशन कहते हैं, हल्की लेकिन लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इस बीमारी का पता लगाने के लिए जरूरी है कि लक्षण कम से कम 2 साल तक जारी रहें। ये अवसाद इंसान के जीवन को गंभीर अवसाद की स्थिति से अधिक प्रभावित कर देता है, क्योंकि इसकी अवधि लंबी होती है। ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा होती है। इसकी शुरुआत बड़ी खामोशी से होती है। इसके लक्षण उन लोगों में दिखाई देते हैं जो लंबे समय तक मानसिक दबाव में रहे हों या अचानक महत्वपूर्ण चीजों अथवा व्यक्तियों को उन्होंने खो दिया हो। इसके लक्षण आमतौर पर शाम के समय अधिक नजर आते हैं। इस बीमारी की शुरुआत 20 से 35 साल की आयु के बीच होती है। अलबत्ता कभी कभी ये भी देखा गया है कि बीमारी की शुरुआत इससे भी कम आयु में हो गई। अगर दो लक्षण, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अवसाद की स्थिति के साथ नजर आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि डिप्रेशन की बीमारी शुरू हो गई है। भूख न लगना या बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत नींद आना या बिल्कुल नींद न आना, थकान, आत्मविश्वास की कमी, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, कोई फैसला न कर पाना और निराशा, ये अवसाद के लक्षण हैं।
अगर बच्चे और किशोर में अवसाद हैं तो ये लक्षण 2 महीने से ज्यादा नहीं नजर आते। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन लक्षणों की वजह कोई अन्य शारीरिक समस्या न हो, जैसे बदहजमी या दवाओं का सेवन या थायराइड जैसी कोई बीमारी। अवसाद के लक्षण जब नजर आते हैं तो इससे इंसान का काम और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित होती है और असर इतना गहरा होता है कि साफ नजर आता है।
अवसाद की एक अन्य किस्म है जिसका नाम है मैनिक डिप्रेशन। यह ऐसी स्थिति में है कि इंसान को लगता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन दरअसल उसके अंदर अवसाद के लक्षण नजर आते हैं। ये पुरानी बीमारी है। इसका पता तब चलता है जब इंसान कम से कम 7 दिन तक इस स्थिति में ग्रस्त हो। ये स्थिति 7 दिन तक जारी रहेगी तो उसके बाद लक्षण बहुत साफ नजर आने लगते हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इनमें बहुत ऊर्जावान नजर आना, नींद कम आना, जल्दी उत्तेजित हो जाना, बहुत तेजी से ख्यालात का मन में आना, खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझना, बहुत अधिक आत्मविश्वास, अजीबोगरीब हरकतें करना, बड़े से बड़ा जोखिम उठा लेना, बहुत ज्यादा खुश नजर आना। अगर बीमारी बढ़ जाए तो इंसान भ्रांति में भी पड़ सकता है।
अवसाद की एक किस्म है डिप्रेसिव साइकोसिस या साइकोटिक डिप्रेशन। इस बीमारी में इंसान हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है और उल जलूल बातें करता है। इंसान को ऐसी चीजें तथ्य के रूप में नजर आने लगती है जिनका अस्तित्व ही नहीं है। उसे ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो मौजूद ही नहीं है। इसी तरह ऐसी महक और स्वाद का उसे एहसास होता है जो मौजूद ही नहीं है। इस बीमारी के शरीर पर भी कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर रिज़वी और स्वाति को अनुमति दें। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें अपने विचार अवश्य लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। तो इसी के साथ हमारी ये सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی